તારીખ 19/3/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 629
ચોથા પુષ્ટકાળ ચાલતા હે આત્મ સ્વરૂપ કે વિષય મે યથાર્થ નિશ્ચય નહીં હો કરકે કલ્પના હો જાતી હૈ એસા ક્યું બનતા હૈ કે તીન કારણ સે એસા બનતા હૈ લોક સંજ્ઞા વાલે જીવ કો ભોગ સંજ્ઞા વાલે જીવ કો ઔર અસત્સંગ કે રુચિ વાલે જીવ કો આત્મ સ્વરૂપ का यथार्थ निश्चय नहीं होता, पहचान नहीं होती और उसको कल्पना हो जाया करती है। आत्मस्वरूप जो है वो परम प्रयोजनभूत विषय है। अपना जो मूल स्वरूप है वो परम प्रयोजनभूत है और प्रयोजनभूत विषय में कल्पना हो जाए इसको गृहित मिथ्यात्व कहते हैं। इसलिए कि बुद्धिपूर्वक उसने अन्यथा ग्रहण कर लिया। दो विषय प्रयोजन होते हैं, एक स्वरूप और एक स्वरूप प्राप्ति का उपाय। दोनों विषय में अन्यथा कल्पना हो जाए तो गृहित मिथ्यात्व हो जाता है। और ये विषय सांसारिक नहीं है, तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले को ही ये दोष उत्पन्न हो जाता है अयोग्यता के कारण से। ऐसे कारणों में उदासीन हुए बिना कल तीन कारणों की चर्चा हो गई है। अब आगे लेना है कि इन कारणों में उदासीन हुए बिना, मैंने उदासीन मैंने इसको गौण करना, लोगों को गौण करना, आत्मकल्याण को मुख्य करना और लोगों को समाज को गौण करना, या किसी भी व्यक्ति को गौण कर देना। लोगों को गौण करने में क्या है कि नाती जाति वाले को गौण करना, संप्रदाय वाले को गौण करना, उतना ही नहीं है, किसी को भी गौण कर देना, कोई भी मनुष्य को, कोई भी व्यक्ति को, एक हो या अनेक हो। मेरा आत्म कल्याण सबसे मुख्य है और सब भोग संज्ञा। भोग संज्ञा तो प्रयोग के बिना उसकी निवृत्ति होगी नहीं, और असत्संग को छोड़ देना। सत्संग में ये सभी लोग आ जाते हैं कि जो सत्संग करते हैं फिर भी सत्संग योग्य नहीं होते हैं। और सत्संग में अपन लौकिक जनों को ले लेते हैं, परिवार को ले लेते हैं, उतना ही नहीं, हम सत्संग में इकट्ठे होते हैं ऐसे व्यक्तियों में भी जो सत्संग के लायक नहीं हो उसका सत्संग करना वो असत्संग है। तो जैसे कोई न कोई प्रकार का ऐसा उनको दुर्गुण हो तो उसका सत्संग से अगर हमें नुकसान होता है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दुर्गुण अपने में चालू हो जाएगा, ये बात हो जाएगी। किसी भी प्रकार का हो इसलिए अपने से जो आगे है उनका सत्संग करना, अगर हमें सुधार करना है तो हमारे से जो आगे हैं, हमारे से जो गुणवान है, गुणी जन का सत्संग करना, हमारे से ज्यादा गुण हो उसका, हीन गुणी का संग करने में हीनत्व की प्राप्ति हो जाएगी। वहां तक उसकी दरकार करनी चाहिए, वहां तक करनी चाहिए, यहां तक करनी चाहिए। इसको उसकी उदासीनता कहते हैं। निसत्व ऐसी लोक संबंधी जब तब अधिक्रिया में साक्षात मोक्ष नहीं है और परंपराय भी मोक्ष नहीं है। तो ये जो हमारे संप्रदाय में जो भी क्रियाएं होती है वो करना के नहीं करना, तो उसमें कोई मोक्ष नहीं है, मोक्ष का कारण भी नहीं है। परंपरा में नहीं, मोक्ष तो नहीं है लेकिन मोक्ष का कारण भी नहीं है। निसत्व मैंने कुछ दम नहीं है उसमें, इसलिए उसमें समय शक्ति का खर्च नहीं करके हमारी समय शक्ति को यथार्थ उपाय में लगाएं वो जरूरी है। ऐसे माने बिना और निसत्व असत शास्त्र कई लोग असत शास्त्र को भी पढ़ते हैं। असत शास्त्र मैंने अज्ञानियों के लिखे हुए ग्रंथ, वो सत शास्त्र नहीं है, असत शास्त्र है। दुनिया में धार्मिक साहित्य फिलोसॉफी में भी बहुत है, तो कोई नामी लोग होते हैं उसमें या बहुत बुद्धिमान होते हैं, जैसे रजनीश का शास्त्र साहित्य बहुत प्रसिद्ध है, बहुत कम भाव में बेचते भी हैं, ऐसे कई लोगों का है, जय कृष्णमूर्ति दूसरे दूसरे कई नामी लोग हैं, लोग पढ़ते हैं, लौकिक इज्जत ज्यादा होती है और बहुत बुद्धिमान होने से कई प्रकार की बातें भी वो लोग कहते हैं। और वैसे स्वतंत्र शास्त्र है तो उसमें भी एडल्ट्रेशन काफी हो गया है। तो ज्ञानी और भावलिंगी दिगंबर मुनि और आचार्य उनके ग्रंथ पढ़ना चाहिए, साहित्य में मर्यादा हो गई हमारी। बाकी में कोई दम नहीं है, नहीं सत्व मैंने कोई दम है ही नहीं। प्रसंग बना था, पार्वदेव के अनुयायी दो चार व्यक्ति थे, उनके रेसिडेंस पे मिलना हुआ तो वहां रमण महर्षि का भी एक ग्रंथ पढ़ा था, काफी अध्यात्म की बातें इसमें है और लिखने वाले कोई श्वेतांबर मुनि है, अमरेंद्र विजय के ऐसा कोई नहीं, तो उन्हें प्रशंसा करने लगे। हमने जो देखा थोड़ा थोड़ा अपना इधर उधर करके हमने रख दिया, फिर टिपाई पे ही पढ़ा था, तो बोले बहुत अच्छा ग्रंथ है, हमने पढ़ा है, हमने देखा कई जगह अंडरलाइन भी किया था पढ़ने वालों ने, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, जैसे हमारे तत्व का अध्यात्म का सिद्धांत है वैसा ही आता है, ऐसा है ऐसा। तो फिर हमने एक प्रश्न पूछा कि हमारे जो वितराग सर्वज्ञ जिनेश्वर देव हैं, जो संपूर्ण निर्दोष हैं, उनको परमेश्वर रूप में वो स्वीकार करते हैं तो नहीं, तो इसका मतलब कि अस्वीकार हो गया। बात तो प्रसिद्ध है वितराग देव की, और ऐसे जो अन्य धर्म के नेता हैं वो तो काफी जानकारी रखते ही हैं, वो सामान्य जन के लौकिक जन की तरह धार्मिक विचारों से अपरिचित नहीं होते हैं, काफी परिचित होते हैं वो लोग जो ग्रंथ लिखते हैं। तो जिसका अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है, ऐसे परमात्मा का जो भी स्वीकार नहीं करते हैं, इस पर भरोसा हम कैसे करेंगे? इनकी इसकी बातों पर हम भरोसा कैसे करेंगे? हाँ, एक बात पर ध्यान नहीं गया हमारा। बात अच्छी लगती है, वो जो लिखते हैं वो बात अच्छी लगती है, तो इसका भी कोई वजह है, कारण है नहीं स्वीकार करने का, कोई वजह है। वहां तक हमें पहुंचना चाहिए। आदमी इनके अनुयायी लोग हैं, वो नहीं मानेंगे तो अलग तो पढ़ते ही है, भगवान का अभिप्राय से वो अलग पढ़ते, वो बात तो स्पष्ट होगी, वरना तो उपकार बुद्धि और पूज्य बुद्धि आए बिना रहे नहीं। अध्यात्म है, उसमें पवित्रता और आत्मगुणों की प्रगटता, प्रागट्य, वो दो बात की विशेषता है। और जिनेश्वर देव में तो पूर्ण पवित्रता प्रकट हो गई है, सभी आत्मगुण प्रकट हो गया है। वाकई अगर इस बात का प्रेम होता है, आकर्षण होता है, तो उसके प्रति पूज्य बुद्धि आए बिना रहे नहीं आती है। तो अवश्य कुछ न कुछ तो कारण है ही, और वो कारण न्याय संपन्न तो दिखता जो भी हो। तो ऐसे लोगों का जो शास्त्र है उनको कहते हैं कि निशत्व है। कैसा है वो? उसमें कोई दम नहीं है, कोई माल नहीं है, ऐसा लेना, उसको महत्ता देना नहीं चाहिए। ऐसे असत शास्त्र, वो क्या है? सत शास्त्र नहीं है किंतु असत शास्त्र है। और असदगुरु, आत्मज्ञान बिना की कोई भी व्यक्ति है, कितनी भी समाज की इज्जत वाली हो, त्यागी हो, विद्वान, विद्वत्तापूर्ण हो, कुछ भी हो, असदगुरु है जो आत्मस्वरूप के आवरण के मुख्य कारण है। क्या लिया है? लाभ तो होगा नहीं, क्या लाभ तो होगा ही नहीं, नुकसान होगा, आवरण आएगा स्वरूप को, आवरण आएगा। क्यों? कि अन्य कल्पना में चढ़ जाएगा, उन्मार्ग में चढ़ जाएगा, छोटे उपाय में लग जाएगा। जो आत्मस्वरूप का मुख्य कारण है, गौण कारण नहीं लिया, मुख्य कारण है, उन्हें साक्षात आत्मघाती जाने बिना, देखो कितनी सीरियस बात लिया है। आवरण करेगा, इसका मतलब क्या? कि आत्मा के गुण प्रकट करने में घात हो जाएगा। आत्मा के प्राण तो ज्ञान और आनंद, अज्ञान और आनंद है, उसका नाश हो जाएगा, उसका घात हो जाएगा, वो उत्पन्न ही नहीं होने देगा। ऐसे जाने बिना जीव को जीव के स्वरूप का निश्चय होना बहुत दुष्कर है। ऐसे जाने बिना अपना स्वरूप की पहचान नहीं आएगी, कितना भी प्रयास करें नहीं हो सकता है, दुष्कर है, मैंने हो ही नहीं सकता, दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है वो प्रयास ही, कितना भी प्रयास हो गए ये बात बनने वाली है। और दूसरा क्या नुकसान होगा? ज्ञानी पुरुष के प्रकट आत्मस्वरूप को कहने वाले वचन भी उन कारणों के कारण जीव को स्वरूप का विचार करने के लिए बलवान नहीं। क्या है? कि ज्ञानी पुरुष का वचन का असर ही नहीं आएगा, कि जो वचन प्रकट आत्मस्वरूप को कहने वाले हैं, प्रकट आत्मस्वरूप को दिखाने वाले हैं। इससे आगे कहें तो आत्मस्वरूप को देने वाले हैं, उस वचनों का, उन कारणों से अपना जीव का स्वरूप का विचार करने के लिए सक्षम नहीं होगा, बलवान नहीं होगा, मैंने योग्यता नहीं आएगी, इतना नुकसान हो जाएगा। वो बात लिया है और सत्संग संबंधित विशेष रूप से लिया है कि ऐसे शास्त्रों का और ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए, और वो संग आत्मघाती है ऐसा जानना चाहिए। इस तरह से ये चौथा पोस्टकार्ड यहाँ समाप्त होता है। अब ऐसा निश्चय करना योग्य है कि जिसे आत्मस्वरूप प्राप्त है, उन बातों से ऐसा निश्चय होना योग्य है कि जिसे आत्मस्वरूप प्राप्त है मैंने प्रगट है माने प्रगट अनुभव गोचर है, उस पुरुष के बिना अन्य कोई उस आत्मस्वरूप को यथार्थ कहने के योग्य नहीं है। चाहे जितने ग्रंथ पढ़े हो, चाहे जितनी बात ज्ञानी से सुनी हो, क्या ज्ञानी से सुनी, चाहे जितने ज्ञानी के आचार्यों के ग्रंथ पढ़े हो, लेकिन जिसको अनुभव नहीं है, प्रकट अनुभव नहीं है, वो उस स्वरूप के विषय में और विधि के विषय में बात करने यथार्थ बात करने योग्य नहीं है। यहाँ भूल ऐसे होती है, देखो शास्त्र में वही तो बात करते हैं, दूसरे तो करते नहीं, एक दूसरी, और जैसे शास्त्र में है वैसे ही करते हैं, फिर क्या आपत्ति, क्योंकि यथार्थ नहीं है। क्या है? यथार्थ नहीं है। और उस पुरुष से आत्मा जाने बिना हमको सुनने का कोई बात है, सुनने का अभिप्राय है, तो उसके पीछे हमारा हेतु क्या है कि आत्मज्ञान करना, यहाँ से तो आत्मज्ञान होने वाला है ही नहीं। उस पुरुष से आत्मा जाने बिना अन्य कोई कल्याण का उपाय नहीं है। अब एक दूसरी बात खड़ी होगी यहाँ पर कि ज्ञानी से अनुभवी से तो ये बात समझना या सुनना, उसन करना, परम सत्संग करना, ये बात तो हमको मान्य है, लेकिन मुमुक्षु को भी आपस में सत्संग करना चाहिए, वो बात ज्ञानी के आज्ञा में होती है, मुमुक्षु तो ज्ञानी है ही नहीं, ये बात सामने आएगी। ये क्रॉस होता है मां, यहाँ जो प्रतिपादन किया उसे क्रॉस होता है। तो अब मुमुक्षु के सत्संग में और ज्ञानी के सत्संग में सिमिलैरिटी कहाँ है, वो हमको देखना पड़ेगा। क्या कौन सी बात पर सिमिलैरिटी है? तो जो ज्ञानी के वचन में है, ज्ञानी के जो वचन है वो स्वानुभव की प्रधानता से आते हैं। कैसे आते हैं? अनुभव प्रधानता से बात करेंगे, कल्पना करके कोई बात नहीं करेंगे। तो जो मुमुक्षु अपने अनुभव की बात करते हैं वो सिमिलर हैं, और जो पढ़ करके सुन करके धारणा रख करके जो करते हैं उसमें वो अनुभव का तत्व नहीं है। तो किसका किसके साथ सत्संग करना कि जो कुछ अनुभव प्रधान प्रयोग प्रधान पद्धति में जिसका प्रवेश हो और वो अपने अनुभव से जो बात सत्संग में लेते हो तो वो सत्संग करने योग्य है। वरना जो धारणा से कल्पना करके जो कहेंगे उनकी कल्पना सुनने वाला समझ करने से उसमें भी वो कल्पना घुस जाएगी, नुकसान तो वो बात थोड़ी चेक करने की होती है। तो मुमुक्षु मुमुक्षु में अगर सत्संग होता है तो सीधा यही बात निकालना चाहिए कि आप जो बात कहते हैं वो आपके अनुभव में कैसे आई वो बताइए, वो तो अंतर है नहीं, आपस में आत्मीयता होती है, तो सीधा वो बात कैसे लेना चाहिए। जब ये बात आप चला रहे हैं कह रहे हैं तो आपके अनुभव में वो बात कैसे आई है, किस तरह से आपको वो बात आप वहाँ कैसे आप आपको पसार अनुभव में आना हुआ पसार होना हुआ आप कैसे चले थे वो बताइए। अगर अनुभव में आएंगे होंगे तो बताएंगे, नहीं आए होंगे तो बता नहीं पाएंगे कि हमको ऐसा हुआ था हमको ऐसा हुआ था हमको ऐसा। तो ये सत्संग यथार्थ होगा, वरना सत्संग होगा शास्त्रानुसार होगा लेकिन यथार्थ नहीं होगा, और बहुभाग ऐसा चलता है। हमारे यहाँ भी कोई ग्रंथ ले लेते हैं, 5-25 जने इकट्ठे हो जाते हैं और उसके अर्थकथन चलता है, कोई गाथा हो कोई पत्र हो कोई वचन हो इसका अर्थकथन चलता है, इस पर चर्चाएं भी चलती हैं और मान लेते हैं चलो सत्शास्त्र लेकर के स्वाध्याय किया सत्संग किया, लेकिन कल्पना कितनी की, इसमें जो विषय सूक्ष्म वाला होगा इसकी कल्पना होगी, इसकी कल्पना दूसरे को भी घुस जाएगी। ऐसा एक प्रश्न बना था और तगड़ा क्षोभ वाला है अपने इतना क्षोभ हमारे कोई गुरुदेव के अनुयायी में नहीं, गुरुदेव के अभिप्राय में तो जैन के किसी फिरके में ऐसा कुछ सूक्ष्म वाला नहीं था, 3 फिरके में दिगंबर ऐसा व्यक्ति था और वो अध्याय कराते थे आत्मस्वरूप के निश्चय के विषय में, लोक संज्ञा के कारण से अन्यथा कल्पना होगी, हमारा उनका थोड़ा टकराव भी हो गया, ऑप्शन बहुत था और इतनी भी अच्छी थी तो वो बात थोड़ी मोटी हो गई, दूसरे लोग बहुत सामने आ गए लेकिन गड़बड़े हैं गुरुदेव से तो फाइनल करो सब पाँच के फंदे पे चढ़ जाऊंगे, ये तो गरीब पूछा तो का विषय हो जाता है, तो बात तो गुरुदेव तक ले गए, गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि गड़बड़ है, तो फिर जहाँ उनका स्वाध्याय बम्बई में होता था ना तो पूछा वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले तो स्वाध्याय करा करने दें या बंद कर दें, तो गुरुदेव ने अपना अभिप्राय दे दिया अगर चालू रखेंगे तो इसकी मान्यता दूसरे में घुस जाएगी, इसका जो अभिप्राय है वो दूसरे में फिट हो जाए, हो ही गया था कई लोगों का तो हो ही जाएगा, ये नुकसान आ जाएगा, सिद्धांत में वो बात चलने वाली मना करती है, वो थोड़ा मान चढ़ गया था शॉक हो गया उनको, तो काफी मेंटल डिस्टर्बेंस हो गया, मान हानि तो हो गया नहीं प्रवचन कर दिया गया, बात तो जाहिर हो जाती है कि इसका प्रवचन बंद हो गया, इसका प्रवचन बंद हो गया। तो जिसको मान चढ़ा हो उनको तो बहुत तकलीफ होती है, तो मानसिक तकलीफ में आ जाते हैं। इन्हें का अभिप्राय वो है कि चाहे जितना सूक्ष्म वाला हो, हमें कोई कल्पना में नहीं चढ़ना है। ये बात की सावधानी हमें खुद को रखनी, क्योंकि जैसे त्याग एक आकर्षण का कारण होता है, ऐसे क्षुभ्रम भी एक आकर्षण का कारण बन जाता है। और बहुभाग त्यागी और क्षुभ्रम वाले को अनुसरण करने लग जाते हैं। कोई जीव ऐसे होते हैं, आत्मार्थी होते हैं, खोजी होते हैं, वही बचते हैं, बाकी बचना बहुत मुश्किल है उस विषय से। इसलिए थोड़ा वजन ज्यादा दे दिया है, ऊपर में भी दे दिया कि आत्मघाती समझना, आवरण के कारण समझना, और अपने को प्रकट आत्म स्वरूप को दिखाने वाले बात समझ में नहीं आएगी। नहीं, वो ही चेक करना है कि जो सत्संग कराता है वो प्रैक्टिकल साइड में अनुभव की लाइन पे चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, और उसको वो चढ़ा है तो ही वो बात कर पाएगा। सुनी सुनाई बात वाले के में तो कल्पना हो ही जाएगी, तो वो बात को हमें समझ करके आगे बढ़ना है। डिस्कशन के तौर पे, लेकिन उसने डिसीजन किया है या जिज्ञासा में है। जो डिस्कशन हमारे साथ करता है तो उसने डिसीजन ले लिया है या जिज्ञासा में है। जो जिज्ञासा में होगा वो कहेगा कि हम तो इस विषय में जिज्ञासा में हैं, अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, तो वो बात ठीक है। अपने को भी जिज्ञासा है, उनको भी जिज्ञासा है, उसके साथ जिज्ञासा के मर्यादा में रह करके डिस्कशन करना ठीक है। लेकिन वो कोई बात का प्रतिपादन करता है, डिसाइड करता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वो किस आधार से, तो वो बात फाइनल करता है तो किस आधार से करता है। उसमें क्या है कि हम जो हमको सत्संग कराते हैं वो विद्या में आए हैं कि नहीं आए हैं, या तो आए हैं या तो नहीं है, दो बात होगी। जो प्रयास में है तो कैसे प्रयास करता है वो देखो, और आए हैं तो कैसे आए हैं वो देखो, ऐसे वो बात। आगे की स्टेज की बात हो तो वो कैसे इसके अनुभव में आई वो देखो, इस तरह से देखना चाहिए। वरना इसके विषय में सिर्फ विचार से कल्पना होती है, वो कल्पना पे हमको नहीं चढ़ना है। हमारे आगे बढ़ने में कहने का मतलब क्या है कि हमारे आगे बढ़ने में हमको प्रैक्टिकल साइड मुख्य होनी चाहिए हमारी, और हमें प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है। मोक्ष मार्ग अनुभव प्रधान है, सहानुभूति प्रधान है, और उसकी जो पहुंच है उसमें भी अनुभव की ही प्रधानता है। क्यों? कि अनुभव की प्रधानता बिना अनुभूति का मार्ग नहीं मिलने वाला है। मार्ग तो अनुभूति वाला है, तो उतनी दरकार होनी चाहिए। तो हमारी नजर जो है वो पैनी हो जानी चाहिए। मानो कम नए नए हैं और उतना आत्मीयता नहीं है और हम पूछ नहीं सकते कि आपको इस बात का अनुभव है या नहीं है, आप कैसे कहते हो। तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके कहने में अनुभव के सिम्टम्स कितने आते हैं। हमारी नजर उतनी पैनी हुई, वो शास्त्र पढ़ करके बोलते हैं या अनुभव को लेकर के बोलते हैं, उस बात की जांच होनी चाहिए। सुगानी जी ने, एक बहुत अच्छे विद्वान ने प्रश्न किया था, जब ये निश्चय प्रधान की बहुत बात करते थे, उन्होंने ये पूछा कि आजकल आप कौन से शास्त्र पढ़ रहे हो। मतलब क्या था पूछने वाले का, कि जो शास्त्र आप पढ़ रहे हो उसी अनुसार अगर आपकी बात आती हो, कहीं ऐसा तो नहीं है जो वर्तमान में जो पढ़ाई हो रही है उसी का इम्प्रेशन हो जाता है, मन पर छा जाता है और वही बात मन की धारणा में से निकला करती है, जो पढ़ते हैं वही निकलेगा, तो उसी विचार में उसी थिंकिंग में वो जीव चलता है। तो उन्होंने सोचा कि कोई पद्धति तो अलग है कहने वाले की, तो कोई ऐसा शास्त्र पढ़ता है तब ये पद्धति से बोलता है या क्या बात है। उन्होंने पूछा, आजकल आप कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हो, क्या शास्त्र की पढ़ाई आपकी चल रही है, कौन सा शास्त्र है। तो बात वो थी हकीकत में कि वो कोई शास्त्र पढ़ते ही नहीं थे उन दिनों में, प्रैक्टिकल साइड में ही लगे हुए थे काफी टाइम से। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि मेरा तो शास्त्र पढ़ने की आदत ही बंद हो गई है, आजकल कोई शास्त्र पढ़ने की मेरी आदत नहीं रही। ऐसा ही जवाब दे दिया, जो हकीकत थी उसने बता दिया, इससे ज्यादा वो बोले नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ नहीं बोला, लेकिन उसका टू दी पॉइंट जवाब दे दिया। अब क्या उसकी रोज दिनचर्या में बात कैसी थी इस विषय के धार्मिक पहलू के, कि जब वो फ्री हो जाते थे अपने व्यवसाय से, या रात को या दिन को, रात को तो फ्री होते ही हैं, दिन को जब फ्री हो जाते थे रहते थे तो कमरा बंद करके ध्यान में बैठ जाते थे, शास्त्र नहीं पढ़ते थे। तो ध्यान में तो क्या होता है कि ज्ञानी को अपने ज्ञान वेदन को आविर्भूत करने का ही कार्य चलता है। तो इस तरह से ख्याल करना है कि प्रैक्टिकल साइड में हम कितने हैं, हमारा वजन, हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य स्वानुभव प्रधानता में, प्रैक्टिकल साइड में शुरू से ही होना चाहिए। तो क्या होगा कि जो प्रैक्टिकल साइड में नहीं है वहाँ आपको आपकी जो नज़र है वो तो बात आई जाएगी। अगर आप प्रैक्टिकल साइड पर वजन रखते होंगे तो, वरना अब आप बातें में आ जाएंगे, बातों में आ जाएंगे। बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, यही बात हो जाएगी। तो ऐसे हमको बातें सुनने में आनंद या मनोरंजन या कोई खुशी नहीं लेना है। सुगानी जी ने बहुत अच्छे निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ वालों को सुनने की रुचि तो बहुत है। मतलब क्या, सुनने की रुचि तो बहुत है लेकिन काम करने की रुचि नहीं है, इसका मतलब हो गया। तो टिप्पणी नहीं किया लेकिन उतना तो बोल दिया कि यहाँ वालों को सुनने की रुचि बहुत है। क्यों, तो सुनने को कोई चुपते नहीं थे, बहुत आते थे। लेकिन बहुत अच्छा सुनने का मिला, बहुत अच्छा सुनने का मिला, बहुत अच्छा सुनने का मिला, बात खत्म। इससे आगे कोई प्रैक्टिकल साइड नहीं होती है, तो ये सुनने का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए नहीं सुनते हैं उनको तो बोला जाता है कि आप सुनो तो सही, लेकिन सुनते हैं उनको ऐसा नहीं बोला जाता है, वाह वाह बहुत अच्छा है, आप सुनने को तो आते हैं, आप तो रोजाना आते हैं, बराबर आते हैं, निवृत्ति लेकर के आगे सुन रहे हो, ऐसा नहीं चले। अब प्रैक्टिकल साइड में आप क्या कर रहे हैं, ये बात पर उसका मूल्यांकन होगा। इसलिए साल में भी निवृत्ति लेकर के भी विचार कर रहे हैं इधर रहने का, रेसिडेंस का तो हो गया पक्का, तो अपने को कहाँ वजन रखना है, सुन सुन के समय नहीं निकालना है, अभी इतने साल निकाल दिए ऐसा अभी सुन सुन के नहीं निकालना है, ये बात ख्याल रखना है, क्योंकि तो इससे कोई लाभ हुआ नहीं और होने वाला भी नहीं। जिज्ञासा जो आपस में सत्संग करने तो दोनों जिज्ञासा में हुए और एक विचार का एक दूसरे का विचार समझे हैं, अलग बात है। ठीक ठीक है, चर्चा करें, लेकिन बात दोनों को ख्याल में होनी चाहिए कि हमारे अनुभव में वो बात नहीं आई है, आप क्या क्या सोचते हैं वो एक जानकारी है, हम क्या क्या सोचते हैं आप जानो, फिर उसमें से कोई तात्पर्य निकालो कि प्रैक्टिकल साइड में कैसे आ सकते हैं, वो हमारी भावना है, तो भावना के कारण से ये चर्चा थोड़ी बहुत चले अच्छी बात है, क्योंकि उसमें अनुसरण करने की बात नहीं आएगी, बात ठीक है या ठीक नहीं है वो बात समझने की है, या हमारे कोई लैकिंग पॉइंट है तो समझ में आए, उतने हद वो बात है। किस में से ये बात निकली कि ऐसा निश्चय करना योग्य है कि जिसे आत्मस्वरूप प्राप्त है, जिसे आत्मस्वरूप प्रकट है, यानी दोनों में अनुभव की बात है, प्राप्त है वो भी अनुभव की प्राप्ति को ही प्राप्त कहते हैं, अनुभव को ही प्रकटता कहते हैं, उस पुरुष के बिना, पुरुष मैंने क्या आत्मा लेना, स्त्री पुरुष के बात नहीं है, उस पुरुष के बिना अन्य कोई उस आत्मस्वरूप को यथार्थ कहने के योग्य नहीं है, आत्मस्वरूप को भी कहने के योग्य नहीं है जिसको आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, और विधि तो बहुत सूक्ष्म है, वो भी विधि में आए बिना विधि कहने को भी कोई योग्य हो सकता नहीं, क्योंकि वो तो सीधी प्रैक्टिकल साइड है, और उस पुरुष से आत्मा जाने बिना अन्य कोई कल्याण का उपाय नहीं है। क्या क्या, उस पुरुष से, अनुभवी पुरुष से आत्मा जाने बिना अन्य कोई कल्याण का उपाय है ही नहीं, ऐसा नहीं कहा है कि शास्त्र पढ़ेगा तो आत्मा कल्याण हो जाएगा, वो बात नहीं है, उस पुरुष से आत्मा जाने बिना आत्मा जाना है क्या, उस पुरुष से आत्मा जाने बिना आत्मा जाना है ऐसी कल्पना, क्या बोला, ज्ञान नहीं, ऐसी कल्पना का मुमुक्षु जीव को सर्वथा त्याग करना योग्य है, आत्मा किसी में जाना है कुछ वो कल्पना ही छोड़ देना, उस आत्मारूप पुरुष के सत्संग को, सत्संग की क्या है, अब ज्ञानी नहीं कहा, सत्पुरुष नहीं कहा, कृपादेव की वाणी देखो है? उस आत्मा रूप पुरुष के सत्संग की निरंतर कामना रखकर क्या जरूरत नहीं है, वो बात तो है ही नहीं। निरंतर उस पुरुष के सत्संग की कामना रखकर उदासीनता से लोक संबंधी और कर्म संबंधी परिणाम से छूटा जा सके, इस प्रकार से व्यवहार करना। व्यवहार तो क्या, विधेय है तो व्यवहार तो करना पड़ेगा। या तो लोक धर्म संबंधी मैंने लौकिक रीति रिवाज, और पूर्व के कर्म संबंधी मैंने उदय हमारे आए हैं पूर्व कर्म के, जो भी व्यवहार करना है उसमें छूटने का दृष्टिकोण रख करके और उदासीनता किस आधार से, ऐसे परिणामों में किस आधार से उदासीनता के आत्मा रूप पुरुष के सत्संग की निरंतर कामना के आधार से, अन्य भाव में उदासीनता रख करके व्यवहार करना तो रस आएगा। क्यों? कि एक और बहुत झुकाव होने से दूसरी ओर का झुकाव अपने आप ही कम हो जाएगा। और जिस व्यवहार के करने में जीव को अपनी महत्ता आदि की इच्छा हो वह व्यवहार करना है यथा योग्य नहीं है, वो प्रश्न को छोड़ दे रहा है। जहाँ अपनी महत्ता का प्रसंग आता है और इच्छा हो जाती है कि चलो कुछ अपना अच्छा दिखेगा, तो प्रसंग को और इस व्यवहार को छोड़ देना, वो करना योग्य नहीं है, ये अपने लिए योग्य नहीं है, नुकसान का कारण है। इस तरह से इस पांचवें पोस्ट कार्ड में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है इस विषय में, आत्मकल्याण होने का नहीं होने का क्या कारण बनता है वो भी दर्शाया है।